सुबह के ठीक 6 बजे थे। न्यारा की आंख अचानक खुली और जैसे ही होश आया, सबसे पहले उसे ज्ञान का ख्याल आया। उसने झट से दूसरी तरफ देखा। बिस्तर का हिस्सा खाली था। साइड टेबल पर उसका लैपटॉप और फोन वैसे ही पड़े थे। न्यारा ने भौहें से कोड़ी, फोन भी यहीं है, शायद बाथरूम में होंगे, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन बाथरूम भी खाली था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। कल से ही वो इस शादी को लेकर अपसेट थी। सारी रात भी वो बिस्तर के एक कोने में सिमटती रही, जानबूझकर ज्ञान से दूरी बनाए हुए। नींद वैसे भी अधूरी थी, उसका शरीर कांपा हुआ था। एक ही रात में उसकी जिंदगी पलट चुकी थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। घर में हल्की सी सुबह की रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। सामने उसके डैड नरेश बेदी और ज्ञान बैठे थे। दोनों आराम से चाय पी रहे थे। ज्ञान मुस्कुरा रहा था। वो शांत, सहज और पूरी तरह नॉर्मल दिख रहा था। आप सही कह रहे हैं डैड, ऐसा ही होना चाहिए था, ज्ञान ने कहा। बिल्कुल बेटा, नरेश बेदी हंसे। तुम ही हो जो मेरी बात से सहमत होते हो, वरना ये दोनों, मंजू और न्यारा, तो कभी मानती ही नहीं। न्यारा समझ गई, फिर से उसकी और उसकी माँ की शिकायत हो रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आ गई। दोनों की नज़र उस पर पड़ी। आओ बैठो, नरेश ने कहा। न्यारा जानबूझकर अपने डैड के बिल्कुल पास बैठ गई। मैं चाय लेकर आती हूँ, उसने कहा और उठने लगी। चाय तो बनी पड़ी है, मैं ले आता हूँ, नरेश ने उसे वहीं बैठा दिया और खुद किचन की तरफ बढ़ गए। ज्ञान ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे डैड भी चाय बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही बनाते हैं। न्यारा ने बस सिर हिला दिया। सच तो ये था, ज्ञान का यूं आराम से इतने कंफर्टेबल होकर बैठना उसे परेशान कर रहा था। वो आदमी जो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता था, आज इतनी बड़ी बात के बाद भी एकदम शांत था। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? न्यारा उसकी तरफ देखती रही। हमें जल्दी निकलना चाहिए, उसने अचानक कहा। आज कोर्ट में तारीख है, बहुत जरूरी है, मैं मिस नहीं कर सकता। नरेश बेदी चाय लेकर लौट आए। तुम अपने मॉम डैड को उठाओ, मैं मंजू को उठाता हूँ, नरेश बेदी ने कहा। उसने ज्ञान की बात सुन ली थी। ज्ञान ने फोन पर टाइम देखा। सबको उठाने की क्या जरूरत है, हम दोनों तैयार होते हैं और निकल जाते हैं, जो पहली फ्लाइट मिलेगी ले लेंगे। ऐसे कैसे बेटा, पीछे से आवाज आई। वो मंजू थी, हल्के से दुपट्टा संभालती हुई। बेटी को विदा करना है तो रस्मों के साथ करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, आप दोनों जाकर तैयार हो जाइए। न्यारा ने माँ की तरफ देखा। मगर शाम खम्मा रहेगा, क्या वो आएगा, नरेश बेदी ने ज्ञान से पूछा। असल में वे उसी बारे में बात कर रहे थे न्यारा के आने से पहले, ज्ञान ने बिना झिझक जवाब दिया। बिल्कुल आएगा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। न्यारा का दिल धड़क उठा। आज वो कुछ ज्यादा ही शांत था। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर लिविंग रूम में आ रही थी। जुबेदा बेथिम और अरमान काफी देर से वहीं बैठे थे। माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर हर रिश्ते की अपनी अलग खामोशी थी। तभी माहिरा सीढ़ियों से उतरती हुई बाहर जाने को आई। आज फैजान कहाँ है, अभी तक उठा नहीं, जुबेदा बेगम ने पूछा। सो रहा होगा, और क्या करेगा, अपने कमरे में ही होगा, माहिरा ने नफरत भरे लहजे में कहा। अरमान ने उसकी बात पकड़ ली। कमरे में करता क्या है, मतलब क्या करता है वो? लैपटॉप पर वीडियो गेम खेलता है, माहिरा ने बेपरवाही से कहा। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, फैजान का नाम आते ही उसका मूड साफ बिगड़ गया था। अरमान दोनों की बातें सुनकर चुपचाप उठ गया। अब वहां सिर्फ माँ बेटी रह गई। जुबेदा बेगम ने गंभीर होकर कहा, शौहर है तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो, और वो नौकरों के कमरे में क्यों रहे, उसे तुम्हारे कमरे में होना चाहिए। माहिरा तिलमिला उठी। वो कमरा भी तो मेरी वजह से है उसके पास, वरना आप तो उसे अलग कमरा देने को भी तैयार नहीं थी, नौकरों के साथ रखती। जब पहले तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी थी तो अब क्या प्रॉब्लम है, माहिरा की आंखों में गुस्सा भर आया। तब वो मेरा शौहर नहीं था, मुझे उसे हमदर्दी थी, प्यार नहीं, आपने जबरदस्ती मेरा निकाह उसके साथ करवा दिया, उसकी आवाज कांप गई। जुबेदा बेगम ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माहिरा सोफे पर बैठ गई, गुस्से और उलझन में डूबी हुई। कुछ देर बाद उसने फैजान को अपने कमरे में बुलाया। फैजान, मेरी बात सुनो, तुम निकाह से मना कर दो, उसने सीधा कहा। फैजान शांत खड़ा रहा। मैं नहीं कर सकता, आप कर दीजिए। तुम क्यों नहीं कर सकते, फैजान की आवाज धीमी मगर साफ थी। क्योंकि सादिया और रेहान का निकाह भी हमारे साथ हो रहा है, पहले हमारा होगा फिर उनका, अगर मैं मना कर दूं तो सादिया की जिंदगी पर असर पड़ सकता है, लोग बातें करेंगे और शायद रेहान भी पीछे हट जाए। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए साफ चिंता थी। वो खुद भी निकाह नहीं करना चाहता था, न माहिरा से न किसी और से, उसका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर था। उसके अब्बा की संपत्ति आधी फरीद खान के पास थी और आधी नासिर खान के पास, पर उसे संपत्ति से ज्यादा फिक्र अपनी बहन की खुशी की थी। सादिया घर में खुश थी, पढ़ी लिखी, समझदार। रेहान जैसा लड़का हर मायने में परफेक्ट माना जाता था। खानदान की कई लड़कियां उससे शादी का ख्वाब देखती थीं। फैजान जानता था अगर उसने इनकार किया तो दोनों भाइयों फरीद खान और नासिर खान की बनाई सारी प्लानिंग बिखर सकती है, इसलिए उसने चुपचाप अपनी चाहत कुर्बान कर दी थी। माहिरा उसे घूरती रह गई। फैजान जिसकी एक बहन थी, मगर सच ये था कि उसका कोई नहीं था। बहन को सिर्फ अपनी फिक्र थी, उसकी परवाह किसी को नहीं थी। सभी के लिए वो घर में काम करने वाले मुलाजिम के जैसी हैसियत थी उसकी। फैजान बहुत अकलमंद था और उसे क्या करना है उसने सोच रखा था। चाहे उसे किसी की भी सपोर्ट नहीं थी, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। निकाह तो कर लिया, मगर माहिरा ने उसे कभी नहीं अपनाया था। वो आज भी वैसे ही रहता था जैसे निकाह से पहले, नौकरों के क्वार्टर्स में। फ्लैशबैक खत्म। नूर बाहर लॉन में फूलों के पास रखी कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सादिया धीरे धीरे बाहर आई। वो कुछ पल दूर खड़ी रही, फिर नूर के पास आकर बोली, नाराज हो क्या मुझसे? नूर तुरंत खड़ी हो गई। नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, उसने हल्की मुस्कान दी। सादिया ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई शिकायत नहीं थी। असल में, सादिया की आवाज धीमी हो गई, कल जो हुआ वो, उसके शब्द अटक गए। नूर ने कप नीचे रखा, भाभी बात पड़ गई थी, मैं भी गलत थी। सादिया को उम्मीद नहीं थी कि नूर इतनी आसानी से बात संभाल लेगी, लेकिन उसके दिल में जो टीस थी वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सुबह की धूप तेज हो रही थी और हर किरदार अपनी अपनी मजबूरियों के साथ खड़ा था। कहीं प्यार था, कहीं कुर्बानी, कहीं अहंकार और कहीं सिर्फ खामोश समझौता। तभी पीछे से आवाज आई। अरमान और माहिरा दोनों लॉन के दरवाजे से अंदर आए। नूर और सादिया को साथ खड़े देखकर अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, बड़ी गहरी बातें हो रही हैं। नूर ने संभलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रेहान भाई की बात हो रही थी। अरमान ने चुटकी ली, अच्छा तो तुम्हारे रिश्ते रेहान भाई से इतनी जल्दी ठीक भी हो गए? बकवास मत करो अरमान, सादिया ने उसे टोक दिया, चलो अंदर चलते हैं, ताई अम्मी अंदर ही हैं। माहिरा ने सिर हिलाया, हम लोग अंदर जाने के लिए नहीं आए, आइसक्रीम खाने चलते हैं सब। हाँ चलो, अरमान ने तुरंत हामी भरी और सादिया की तरफ देखकर कहा, तुम भी चल रही हो ना? ठीक है चलो चलते हैं, सादिया बोली और रेहाना बेगम से परमिशन लेने अंदर चली गई। माहिरा ने नूर की तरफ मुड़कर कहा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नूर थोड़ा झिझकी, उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी। तो तुम भी ताई अम्मी से ले आओ, सादिया भी लेने गई है, माहिरा ने कहा। नूर ने धीरे से कहा, नहीं मुझे रेहान भाई से परमिशन चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। उसकी बात सुनकर अरमान और माहिरा दोनों हैरान रह गए। ठीक है अभी बात करवा देता हूँ, अरमान ने फोन निकाला और रेहान को कॉल लगाया। भाईजान नूर आपसे बात करना चाहती है। नूर ने फोन लिया, भाईजान मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। रेहान ने हैरानी से पूछा, किस बात की?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।